ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है। चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज शाम तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। वे कल कंधमाल, बुलंगीर और बरगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा के बाद रानीगंज में पार्टी के आसनसोल लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त रूप से चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से पहले कन्नौज में और फिर कानपुर जिले में एक और रैली को संबोधित किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वे आज बहराइच में एक और राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि वो धार्मिक आरक्षण लाकर संविधान को परिवर्तित करना चाहती है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उनकी सरकार संविधान बदल देगी। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संशोधन कर कांग्रेस ने पहले संविधान की मूल भावना पर आघात किया है। जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लद्दाख के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत सुसे ने करगिल जिले में घर से वोट की अग्रणी पहल के लिए चुनाव दलों को आज रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घर से ही वोट डालने की सुविधा प्रदान करना है। 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और दिव्यांगों को यह सुविधा प्रदान करके निर्वाचन आयोग ने सुलभ और न्याय संगत चुनावी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग से संदेश खाली में महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धमकी के कारण अपनी शिकायतें वापस नहीं लेना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं को धमकाकर आम चुनाव 2024 के बीच में अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह संभावित रूप से क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष न्यायालय ने आम आदमी पार्टी प्रमुख को 7वें चरण के लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने से एक दिन बाद 2 जून को समर्पण करने को कहा। श्री केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय की देरी पर उंगली उठाई। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को केवल चुनाव के लिए जमानत दी है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीरज ने पिछली डायमंड लीग प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।